दिन भर 13 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। विजय माल्या के बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में वाक युद्ध।
एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की जांच की मांग।
मैं कहता हूँ जब संदेह आ जाती है तो पब्लिक को जांच करके ही बताना पड़ेगा। जांच किस बात पर? एक ही बात पर कि टीका किया गया तो किसके आदेश पर टीका किया गया।
म्यांमार की नेता ओंग सान सू ची ने किया पत्रकारों को सजा दिए जाने का बचाव।
They were not jailed because they were journalists. They were jailed because the court has well.
आपकी चिट्ठियां भी होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारतीय बैंकों का कर्ज बिना चुकाए विदेश चले गए व्यवसायी विजय माल्या को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विजय माल्या को भारत से भागने दिया और ये सब मिलीभगत से हुआ। वहीं भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि हमारी सरकार जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। इससे पहले कल विजय माल्या ने कहा था कि उन्होंने भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। दक्षिण कोरिया के 4 बड़े व्यवसायियों को देश के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ उत्तर कोरिया जाने के लिए न्योता दिया गया है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार सैमसंग, ह्युंडे, एलजी और एसके ग्रुप के प्रमुखों को प्योंगयांग जाने का न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति मून जे इन का कहना है कि वो उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के साथ बात करने के बाद उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच संबंध बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति के सलाहकार मून चुंग इन ने कहा, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक और सम्मेलन के आयोजन में राष्ट्रपति मून जे इन की अहम भूमिका हो सकती है। मुझे फिलहाल नहीं पता कि सम्मेलन कब होगा, कहां होगा, लेकिन राष्ट्रपति मून और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच और राष्ट्रपति और किम जोंग उन के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और अब स्थिति पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। पहले नेतृत्व के स्तर पर बातचीत नहीं हो रही थी और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति से निपट सकते हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के सलाहकार मून चुंग इन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ बढ़ता तूफान अब धीमा पड़कर कैटेगरी 2 के तूफान में बदल गया है, लेकिन मौसम विभाग ने यहां तेज हवाओं और बारिश के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। उत्तर और दक्षिण कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और जॉर्जिया ने आपातकाल घोषित कर दिया है और कहा है कि तूफान फ्लोरेंस के कारण भयंकर बाढ़ आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि तूफान धीमा पड़ने के कारण ये इलाके में अधिक देर तक ठहर सकता है। उत्तर कैरोलिना की ब्रुकस्टोन में रहने वाली लिज ब्राउनिंग फॉक्स कहती हैं, हमने सभी जरूरी चीजें बांध ली हैं और जो कुछ भी बाहर था वो सब सुरक्षित जगह पर जमा कर लिया है, जैसा कि आप किसी हमले की स्थिति में करते हैं। हमने आपात स्थिति के लिए सभी जरूरी चीजों की व्यवस्था भी कर ली है और एक सप्ताह या फिर उससे कुछ और दिन दुनिया से संपर्क टूटने की स्थिति में सुरक्षित रह सकते हैं हम। मैं और दूसरे लोग जिनके पास जनरेटर है, हमने ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि वो काम करने की स्थिति में हों और हमने उसके लिए तेल भी जमा करके रखा है। उत्तर कैरोलिना में रहने वाली लिज ब्राउनिंग फॉक्स के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज कहा है कि उनका देश एक ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जिम्मेदार है जो 60 साल पहले अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई के दौरान शोषण के लिए जिम्मेदार बना। इससे पहले कई बार फ्रांसीसी जनरलों ने इस बात को स्वीकार किया है कि 8 साल चले इस संघर्ष के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों को यातना दी गई थी, लेकिन ये पहली बार है जब किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने माना है कि देश की व्यवस्था के कारण यातनाएं होने दी गईं। उनका ये बयान मॉरिस ऑडिन की पत्नी जॉसेट से मुलाकात के बाद आया, जिन्हें 1957 में गिरफ्तार कर कई दिनों तक यातना दी गई थी। माना जाता है कि उन्हें मार दिया गया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारतीय बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए के बकायेदार उद्योगपति विजय माल्या के बयान के बाद भारत में भाजपा बनाम कांग्रेस की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि विजय माल्या के विदेश रवाना होने से दो दिन पहले उन्हें अरुण जेटली से बात करते हुए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने देखा था और ये बात सीसीटीवी फुटेज में भी देखी जा सकती है। इसका जवाब देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर विजय माल्या से अच्छे संबंध रखने का आरोप लगाया है। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
शराब कारोबारी विजय माल्या की संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई मुलाकात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वाक्य युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों कूद पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने विजय माल्या को भारत से भागने दिया और ये सब मिली भगत से हुआ है।
फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है, एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूँ, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। क्यों नहीं? जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? ये काम वही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है।
ये पूरा मामला बुधवार को लंदन में दिए गए विजय माल्या के बयान से शुरू हुआ।
I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London.
विजय माल्या कह रहे थे कि उन्होंने संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने वित्त मंत्री से कहा कि वो बैंकों का कर्ज चुकाना चाहते हैं। माल्या के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई और विपक्ष ने इस पर अरुण जेटली को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया का कहना था कि विजय माल्या और वित्त मंत्री की संसद में हुई मुलाकात के वो गवाह हैं।
देश जिस पे विश्वास करता है, उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है। उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। पहली तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इसे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं।
वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सफाई देते हुए स्वीकार किया कि संसद में माल्या ने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की थी। उनका कहना था कि विजय माल्या और उनके बीच कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि माल्या ने सांसद होने का फायदा उठाया और अनौपचारिक बातचीत की थी।
विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहां बैठा हूं और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप जो कहना है बैंकर्स को कहिए।
मगर कांग्रेस वित्त मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं,
इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि ये भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। तो ये क्लियर कट कल्यूजन है, इसमें कोई ना कोई डील हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर को सीधा बता देना चाहिए क्या हुआ है, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।
वहीं इस वाक्य युद्ध में प्रधानमंत्री भी उतरे और उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा,
कई बार तो मुझे कांग्रेस के अनेक पुराने कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने संघर्ष किया, जमीन पर काम किया, कभी कभी उनके प्रति बड़ी दया आती है, संवेदना का भाव आता है। उनका संघर्ष, उनका सामर्थ्य सिर्फ एक परिवार के काम ही आ रहा है, और अगर उस परिवार के काम नहीं आया तो बाहर। भाजपा में नाम से नहीं, काम से नेतृत्व तय होता है।
अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी चल ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जांच की मांग कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि आपने सुना कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले की जांच की मांग की है, बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने ही सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात की, सुनिए।
पहले सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस निकाली थी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दी जाती है फाइनेंशियल स्कैम के कारण फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुमति से। वो है जो निकाला था उन्होंने, वो था कि मल्या विदेश बाहर जाने के लिए आएंगे एयरपोर्ट तो उनको मना करना है और उनका पासपोर्ट ले लेना है। तो ये चल रहा था 24 अक्टूबर 2015 तक। अब उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री की सलाह पर उसको फीका करके रिपोर्ट कर दिया, उसके माने मल्या आए हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से अब हवाई जहाज में बैठ के रवाना हो गए हैं, ये उसको फीका वाला है। तो इसको फीका किया गया था, माने मल्या को रोका नहीं, मल्या को जाने दिया। ये फीका किसने किया इस संदर्भ में कि मल्या ने कहा कि मैंने जेटली से पार्लियामेंट में बात करके उसको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। अब इनकी इरादा थी कि मल्या को पकड़ना है तो तुरंत सीबीआई को बता देते कि इसको मत जाने देना, परंतु उनका तो मिनिस्ट्री ने तो ये कह दिया कि उसको जाने देना है, तो उसने कुछ किया नहीं। तो ये है सवाल, इसके लिए सफाई मांग रहा हूँ कि ये फीका क्यों किया।
नहीं, आपने जो उसमें लिखा ये भी है कि 54 जो है चेक लगेज आइटम के साथ जो है वो गए
था 54 लगेज पीसेस के साथ।
तो ये जो है बिल्कुल मिलने के बाद हुआ है, क्योंकि डेट्स तो ऐसी लग रही हैं, क्योंकि वो जो दावा कर रहे हैं कि पहले मिले थे,
वो मिले थे उसके 3 दिन के बाद चले गए थे
और ये कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ लंदन।
हाँ, वो तो वो मल्या कहता है। अच्छा, आप और एमपी से बात करनी चाहिए जो सेंट्रल हॉल में बैठे थे उस समय, वो तो कहते हैं दोनों का लगभग 1 घंटा की बातचीत हुई है। अभी वो पूनिया है कांग्रेस का, उसका बयान है, तो इस पर जांच करनी पड़ेगी, वॉच एंड वॉट स्टाफ से पूछनी पड़ेगी, भाई आपके पास रजिस्टर है, क्योंकि हर दिन वॉच एंड वॉट स्टाफ पार्लियामेंट का लिखते हैं कि सेंट्रल हॉल में कौन सी बड़ी बात हुई आज, तो उसको देखकर बताना चाहिए।
और जेटली साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि रस्ते में चलते चलते बात हुई और फिर मैं जो है स्नब करके अपने रूम में चला गया।
मैं कहता हूँ आई विटनेस तो कहते हैं बैठे थे, ये कहते हैं चलते चलते, तो जांच से ही तो पता लगेगी, मैं कैसे बताऊंगा।
तो इसमें सीसीटीवी फुटेज पुनिया जी कह रहे हैं कि निकाला जाए,
आप पता नहीं सेंट्रल हॉल में सीसी फुटेज है कि नहीं सीसीटीवी का।
कि अगर देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री एक फाइनेंशियल डिफॉल्टर जो है बैंक्स का, वो अगर मिलने आता है और फिर मिलके चला जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, रादर जो है फैलिसिटेट किया जाता है, तो ये तो साफ एविडेंस उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं।
वो तो इसीलिए मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं पक्का जानता हूँ कि यही हुआ। मैं कहता हूँ जब संदेह आ जाती है तो पब्लिक को जांच करके ही बताना पड़ेगा। जांच किस बात पर, एक ही बात पर, फीका किया गया तो किसके आदेश पर फीका किया गया।
संदेह पैदा हो गया है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, कह रहे थे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के चलते मतगणना स्थगित कर दी गई है। ईवीएम में खराबी की शिकायत पर छात्र संगठनों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद पहले 1 घंटे के लिए मतगणना रोकी गई और फिर बाद में चुनाव अधिकारियों ने आज दिनभर के लिए मतगणना स्थगित कर दी। कांग्रेस से जुड़े छात्र दल एनएसयूआई ने दोबारा चुनाव की मांग की है। दिल्ली से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
पांच कदम पे ये सरकार
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नदी कदम पे ये सरकार
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
पांच कदम पे
ये शोर और नारेबाजी ईवीएम में गड़बड़ी के खिलाफ हो रही है और ये कोई विधानसभा या लोकसभा नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय का परिसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मतगणना केंद्र के बाहर ईवीएम में गड़बड़ी सामने आने के बाद आज ऐसे ही नारे लगे। छात्र संघ के कुल 23 पदों के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी और उसकी मतगणना आज हो रही थी। छठे राउंड के वोटों की गिनती चल रही थी तभी मतगणना केंद्र से बाहर एक खबर आग की तरह फैली कि ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण काउंटिंग को स्थगित किया गया है। इसके बाद वहाँ हेरा फेरी नहीं चलेगी के नारे लगने लगे। छात्रों का आक्रोश बढ़ता देखकर पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन ने मतगणना स्थल पर तैनात कर दी गई। इससे पहले भी 4 राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 1 घंटे के लिए काउंटिंग रोकी गई थी। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के छात्रों ने इसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की साजिश बताया। मतगणना केंद्र के बाहर परिणामों के इंतजार में खड़ी आयशा की मधुरिमा ने कहा,
देखिए जिस तरीके से DU में आयशा और CYSS के अलायंस के वजह से एक माहौल बना था कि इस बार डूसू बदलने वाला है, गुंडों का डूसू नहीं बनने वाला है, उसके बाद आज जो ईवीएम के मेल फंक्शनिंग हुआ, ये इसी लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स का डूसू बने, इसको रोकने के लिए एवीपी से लेके प्रशासन इस पूरे लगा हुआ है कि स्टूडेंट्स का डूसू ना बनने दिया जाए, गुंडों का डूसू बना रहे।
वहीं एबीवीपी की प्रज्ञा अपने संगठन को छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध रहने वाला संगठन बताती है।
कुछ ऑर्गेनाइजेशन खाली डूसू के चुनाव में जब आते हैं तभी एक्टिव होते हैं, लेकिन एबीवीपी ने क्यों आप बात नहीं उठाते, क्या बोलते हैं प्रिंटेड मार्कशीट की, हम ये एबीपी ने बात उठाई। सबसे फर्स्ट प्रोसेस अगर किसी ने किया तो 24/7 लाइब्रेरी के लिए तो वो हम लोग थे।
दरअसल सारा मसला सचिव पद के लिए ईवीएम में पड़े 10वें नंबर के बटन पर 40 वोटों को लेकर था। सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे, तो जाहिर है ईवीएम में 8 बटन काम करने चाहिए और 9वां बटन नोटा के लिए होना चाहिए, लेकिन काउंटिंग के दौरान पता चला कि 10वें नंबर के बटन पर भी 40 वोट पड़े थे। आखिर ये 40 वोट किसके खाते में गए थे, इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो आखिर तक नहीं थमा और मजबूरन प्रबंधन ने मतगणना को स्थगित करने का फैसला लिया। NSUI और छात्र संगठन आईसा यूनिटी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से केवल इतना ही कहा गया है कि चुनाव कमेटी की बैठक के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। नीरज प्रियदर्शी, BBC दिल्ली।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने हाईवे पर ट्रकों को निशाना बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर 33 कत्ल किए हैं। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
आदेश खामरा दिन में तो दर्जी का काम करता था, लेकिन रात के वक्त उसकी कोशिश हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनरों से दोस्ती करने की होती थी। वह उनसे दोस्ती करके उन्हें नशा करवाता था और उसी दौरान वह नशे की तेज गोलियां उनकी शराब में मिला देता था। उसके बाद वह और उसके साथी उन्हें ले जाकर उनकी हत्या कर देते थे और ट्रक का सामान बेच देते थे। यह सिलसिला 2010 से जारी था। उस वक्त से खामरा एक गैंग के लिए काम कर रहा था। हर रोज आदेश खामरा नए नए खुलासे कर रहा है और उसे खुद सही तरीके से याद नहीं है कि उसने कितनी हत्याएं की हैं। भोपाल के DIG धर्मेंद्र चौधरी ने बताया,
आदेश खामरा और उनकी गैंग ने अभी तक 33 हत्याएं स्वीकार की हैं, जिनमें अधिकांश की पुष्टि हो गई है और लगातार हम इसमें खोजबीन कर रहे हैं। आज हमने 3 और नई हत्याओं का खुलासा किया। इस प्रकार से अभी तक 33 हत्याओं का खुलासा हो चुका है। इसमें आसपास के 5-6 राज्यों का इसमें कनेक्शन है। हम हर बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
पिछले महीने की 15 तारीख को भोपाल पुलिस को एक लाश मिली जो ओबेदुल्लागंज के रहने वाले 25 साल के माखन सिंह की थी। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई। मृत व्यक्ति मंडीदीप से लोहे का सरिया लेकर ट्रक से निकला था। ट्रक लावारिस हालत में भोपाल में मिल गया, लेकिन ड्राइवर की हत्या किसने की थी यह पता नहीं लग पाया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की गई तो उसने दूसरे लोगों के नाम बताए। इसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां की गईं और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक के बाद एक राज उगले। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस साल जनवरी से आदेश खामरा ने गैंग के लिए काम करना छोड़ दिया और खुद ही अपना गैंग बना लिया। उसके साथ जयकरण नाम का एक व्यक्ति जुड़ गया जो पैसे लेकर उसके लिए काम करने लगा। इतने सारे लोगों की हत्या करने के बावजूद पुलिस को इन लोगों की दिमागी हालत पूरी तरह से संतुलित लग रही है। DIG धर्मेंद्र चौधरी ने बताया,
बातचीत में तो यही लग रहा है कि दिमागी संतुलन पूर्णतः ठीक है। जो जयकरण नया जुड़ा है और उसके द्वारा भी अब अपने तौर पर जो हमारी पहली घटना पकड़ाई है बिलखिरिया की, उसमें जयकरण अलग से अपने नए साथियों के साथ सामने आया है। आदेश ने भी कई लोगों के साथ अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों के साथ काम किया है। इस प्रकार ये लोग अपने समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार साथी बना लेते हैं और उनके साथ ये इस प्रकार की मर्डर करने की घटनाएं करते हैं।
इनकी खास बात यह थी कि यह लोग टाटा के 12 या 14 चक्के वाले ट्रकों को ही निशाना बनाते थे। इसकी वजह यह थी कि इसकी कीमत इन्हें ज्यादा मिलती थी। यह ट्रक उत्तर प्रदेश और बिहार में बिचौलियों की मदद से बेच दिए जाते थे। वहीं यह लोग उसमें मौजूद सामान भी बेच देते थे। आदेश की खासियत यह थी कि वह हर हत्या के बाद किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं छोड़ता था। शायद इसी वजह से वह इतने सालों तक पुलिस से बच कर रह पाया। हर हत्या को अंजाम देने के बाद वह फोन और सिम भी बदल डालता था। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पुलिस को उसके अलग अलग मोबाइल फोन के लगभग 45 IMEI नंबर मिल चुके हैं और उसमें उसने 50 से ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल भी किया है। आदेश को मालूम था कि ट्रक ड्राइवर लंबी दूरी तय करते हैं और आमतौर पर नशे के आदी होते हैं। इसी के चलते वह इन लोगों से दोस्ती कर लेता था और फिर उन्हें नशे की गोली देकर मार डालता था। शुरहनिया जी, BBC न्यूज, भोपाल।
म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने अपने देश में दो पत्रकारों को जेल भेजे जाने का बचाव किया है। इन पत्रकारों पर आरोप है कि रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सेना के हिंसक अभियान की रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने देश का गोपनीयता कानून तोड़ा। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की इस मामले पर नजर रख रहे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से और उनसे पूछा कि ये पूरा मामला क्या है।
देखिए कुलदीप, ये मामला पिछले साल का है, अक्टूबर नवंबर की बात है। इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि दरअसल फौज ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे एलिगेशंस लग रहे थे कि उसमें नरसंहार यानी जेनोसाइड उस तरह की बातों की जिक्र हो रहा था। इत्तेफाक से मैं उस वक्त रखाइन में था, उसकी राजधानी सितवे में था, और ये दो पत्रकार हैं ये बर्मा के रहने वाले हैं यानी म्यांमार के नागरिक हैं। दोनों रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं। इनमें से एक से मेरी 3 दिन बाद भी हुई थी और मसला ये था कि सभी पत्रकार जो वहाँ पर पहुँच सके किसी न किसी तरह से, उनको एक ही खबर चाहिए थी, क्या पुख्ता सबूत हैं कि रखाइन में बर्मा की फौज ने एक बहुत हिंसक कार्रवाई की थी। तो दरअसल इन दो पत्रकारों को जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के हैं उन पर म्यांमार का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया गया, यानी उनके पास से वहाँ की पुलिस के मुताबिक कुछ ऐसे दस्तावेज निकले, वो दस्तावेज अति गोपनीय थे और इसलिए उनको हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और एक अदालत ने हाल ही में उनको 7 साल की सज़ा सुनाई। आंग सान सूची इस पूरी प्रक्रिया में पिछले साल से अब तक खामोश थी। अब जाकर उन्होंने एसियान में इन पत्रकारों की हिरासत के बारे में, उनकी जेल के बारे में बोला है और उन्होंने ये कहा।
उन्हें पत्रकार होने की वजह से जेल में नहीं डाला गया है। देखिए, उन्हें सजा सुनाई गई है क्योंकि अदालत ने पाया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ा है। अगर हम कानून में यकीन रखते हैं तो उन्हें पूरा हक है कि इस फैसले के खिलाफ अपील करें और बताएं कि ये फैसला कहां गलत है।
दरअसल कुलदीप, आंग सान सूची जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके ऊपर बहुत दिनों से एक लंबा दबाव बना रहा है कि वो इस मामले पर बचती रही हैं, कतराती रही हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जवाब देने से। अभी खबर आई थी कि अब वो संयुक्त राष्ट्र में भी नहीं जा रही हैं हिस्सा लेने, और ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं फिल रॉबर्टसन, उन्होंने एक नया बयान दिया है।
इन द कोर्ट वी हैड अ पुलिसमैन testify that his superior had
एक पुलिसकर्मी ने अदालत में गवाही दी थी कि उनके सीनियर ने इन रिपोर्टरों के खिलाफ केस बनाने को कहा था। उसकी ये गवाही अदालत में स्वीकार की गई लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया। ये पूरा मामला गढ़ा हुआ लगता है। आंग सान सू ची भी ब्यूरो में नहीं गई, उन्होंने बस अतीत की बातें की। रोहिंग्या मामले को जिस तरह डील किया गया उसे देखें तो आंग सान सू ची कई चीजें कर सकती थी पर वो उस बारे में बात नहीं करती। वो सामान्यीकरण के अंदाज में बात करती हैं और सोचती हैं कि उनकी छवि उन्हें मुश्किल सवालों से बचा ले जाएगी।
विडंबना कुलदीप ये है इस पूरी प्रक्रिया में कि ये वही आंग सान सूची हैं जिन्होंने 1988-89 में एक NLD पार्टी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि बर्मा में एक असहयोग जन असहयोग आंदोलन चलाएंगी फौजी सरकार के खिलाफ, और आज की तारीख में जिस लोकतंत्र और जिस लोकतांत्रिक वैल्यूज़ के लिए वो जानी जाती थी उसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर है इस पूरे सवालों के घेरे में जो सेंट्रल फिगर हैं वो खुद सूची हैं।
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप, और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय, आपकी राय में मेरा यानी कि इंदु पांडे का नमस्कार है और आज मेरे साथ है।
नमस्कार राजेश, प्रियदर्शी की ओर से।
तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं राजेश
जी। बिल्कुल,
ये हमारे पास ईमेल आया है अथर सलीम का, कस्बा कोईरीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि इस विषय पर मेरा ये 3रा मेल है, हालांकि अब मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि बीबीसी के उद्घोषक और संवाददाता हालातों शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं जबकि शब्द हालात अपने आप में हालत शब्द का बहुवचन है।
बिल्कुल सही बात है, और जो लोग करते हैं ऐसा अज्ञानवश करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। आपकी चिट्ठी हम शामिल कर रहे हैं। जो बीबीसी के श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए भी ये है कि हालात जो हैं वो हालत का बहुवचन है, वैसे ही जैसे कि कागज़ का बहुवचन कागजात है। बहुत सारे लोग कागजातों कहते हैं, वो भी गलत है। तो बहुत शुक्रिया आपका इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए, और इससे हमारे सुनने वालों को भी एक बात पता चली जी।
और ये अगला मेल है गणेश प्रसाद हुजदार का, लिखते हैं कि रेहान साहब ने डॉक्टर सीमा आनंद की पुस्तक द आर्ट ऑफ सिडक्शन के आधार पर बॉलीवुड गीतों से पिरोकर रिझाने की कला को विवेचना में इतनी खूबसूरती से पेश की कि उसे बार बार सुन के भी जी नहीं भर रहा। तो बहुत तारीफ लिखी है, साथ में वात्सल्य राय द्वारा दुनिया जहान में यूरोप का अमीर देश स्वीडन की बिगड़ती राजनीतिक और आर्थिक अवस्था तथा खतरे में पड़ती पहचान के बारे में सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
आपका भी बहुत धन्यवाद। और रेहान साहब जब ये कार्यक्रम कर रहे थे उसके प्रसारण से पहले हम लोगों ने बैठकर बात की और हमें थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि लोग कहेंगे कि आप ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने बल्कि ये चिट्ठी भी लिखी कि ये कार्यक्रम जो लोग नाबालिग हैं वो सुनेंगे, उन पर इसका क्या असर होगा। लेकिन कई बार ऐसे जो चुनौती वाले काम हैं वो करने चाहिए, उससे नई चीज़ें बन पाती हैं।
और गौतम दत्ता हैं बहादुरगंज किशनगंज बिहार से। सोमवार को जब हमने आपकी राय किया था तो इनकी चिट्ठी ली थी, लेकिन मैं शायद मेरी गलती रही होगी, इनका पता और नाम नहीं ले पाई थी, तो वही पूछ रही थी कि क्या मैंने लिखना भूल गया था। तो भाई मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। साथ में वात्सल्य राय की दुनिया जहान को बहुत पसंद किया है इन्होंने।
गौतम दत्ता जी हैं और ये बहादुरगंज किशनगंज बिहार से
जी। और अगला हमारे पास जो मेल आया है वो है सोनिया वर्मा रायपुर से। लिखती हैं कि हमें आपकी वेबसाइट अच्छी लगी, मैं भी अपने कुछ दोहे और गज़लें आपकी साइट पर छपवाना चाहती हूं, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?
पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपको वेबसाइट अच्छी लगी। आप लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, दोहे लिखती हैं, गज़लें लिखती हैं, ज़रूर लिखती रहिए। लेकिन हमारी वेबसाइट जो है वो समाचार प्रधान वेबसाइट है, समाचार और विश्लेषण होते हैं, साहित्य कविता कहानी हम नहीं प्रकाशित कर पाते क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर कविताएं कहानियां छपती हैं, आप अपनी रचनाएं उनको ज़रूर भेजें। और अब चिट्ठियों का वक्त भी पूरा हो गया है तो चलते चलते इंदु जी पता बता दीजिए।
जी हाँ, पता है आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने अपने चमकते हुए करियर को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है और अब हॉकी जगत में सरदार सिंह की ये घोषणा कि वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले रहे हैं सबके लिए हैरानी की बात है। 32 वर्ष के इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 2008 से लेकर के 2016 तक 8 वर्षों तक राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी संभाली। लेकिन पिछले एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुए थे उसके बाद हॉकी की टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हॉकी के जाने माने जानकार हरविंदर सिंह का कहना है,
एशियन गेम्स में जब हमारी टीम की कामयाबी इतनी अच्छी नहीं रही, यहाँ पर सोचा था कि गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल ही मिला, तो उनका ये सोच रहे हैं कि ये एक सही समय है और एज भी उनके अगेंस्ट भी जा रही है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लें, हालांकि वो डोमेस्टिक हॉकी और अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलते रहेंगे, तो ये उनका अपना निर्णय और मेरे ख्याल में ये उनका सही निर्णय।
बैडमिंटन का जापान ओपन जो 11 सितंबर को शुरू हुआ और चलेगा 16 सितंबर तक, इसमें महिला सिंगल्स के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु को चीन की गाओ फांगजी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। पिछले लगभग एक साल में ये पहला मौका है जब पीवी सिंधु किसी टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हुई हैं। दूसरी तरफ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है, उन्होंने जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और अब उनका सामना दक्षिण कोरिया के ली डोंग क्यून से होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। वो 3 अक्टूबर 2018 से दफ्तर का कार्यभार संभालेंगे। भारतीय बैंकों का कर्ज बिना चुकाए विदेश चले गए व्यवसायी विजय माल्या को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। दक्षिण कोरिया के 4 बड़े व्यवसायियों को देश के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ उत्तर कोरिया जाने के लिए न्योता दिया गया है। अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ बढ़ता तूफान अब धीमा पड़कर कैटेगरी 2 के तूफान में बदल गया है, लेकिन मौसम विभाग ने यहां तेज हवाओं और बारिश के साथ ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उनका देश एक ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए जिम्मेदार है जो 60 साल पहले अल्जीरिया की आज़ादी की लड़ाई के दौरान शोषण के लिए जिम्मेदार बना। स्पेन की संसद के निचले सदन ने फासीवादी तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रेंको के शव को कब्र से निकालने की अनुमति दे दी है। इस सिलसिले में मतदान हुआ था जिसमें सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी और गठबंधन के उनके सहयोगियों ने इसके समर्थन में मतदान दिया था। दो मध्यमार्गी दक्षिणपंथी पार्टियों और एक और स्थानीय पार्टी ने मतदान करने से इनकार कर दिया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया कपिल देव सिंह ने। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।